नमस्कार, मैं अपना श्रीवास्तव बहराइच मोबाइल वाणी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। लोक लुभावन घोषणा की होड़। आप लोग तो जानते होंगे, चुनाव आने वाला है तो हमसे कितने वादे किए जाएंगे और कितने निभाए जाएंगे, कितने सिर्फ कह के छोड़ दिए जाते हैं जो कि सिर्फ कहने के लिए ही होते हैं। देखो, चुनावी की घोषणा होने के साथ ही लोक लुभावन घोषणा भी का सिलसिला भी जारी हो चुका है। भारत राष्ट्र समिति की ओर से जारी घोषणा पत्र में गरीबों को दो कमरों का घर, 400 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने वाले किसानों को दी जाने वाली सालाना 10,000 रुपए की राशि 16,000 रुपए करने का वादा किया गया है। इसी के साथ पुरानी पेंशन योजना पर विचार करने का आश्वासन भी दिया गया है। और इसके जवाब में तेलंगाना के नेता लोग भी हैं, संकेत दिए हैं कि अपने घोषणा पत्र में विवाह के समय लड़कियों को 1,00,000 रुपए के साथ 10 ग्राम सोना और छात्रों को मुफ्त इंटरनेट दे सकते हैं। फिर वहां मध्य प्रदेश में क्या हुआ है कि एक की घोषणा पत्र जारी किया गया है, उसमें किसानों का कर्ज माफ करने के साथ 100 यूनिट तक मुफ्त एवं 200 यूनिट तक आधे मूल पर बिजली देने का वादा किया गया है। अब ये वादा कहाँ तक पूरा होता है तो देखेंगे। फिर से किसानों को, जो किसान है उनका बकाया बिजली बिल माफ कर देगी। उसने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया, करने के साथ ही कहा है कि वह आईपीएल की टीम बनाने की कोशिश करेगी। सरकार किया पहला साफ ही राजनीतिक दल लोक लुभावन घोषणा के मामले में किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। जितने भी नेता मंत्री आते हैं सब हमसे खाली वादे करते हैं। जब कोई एक दल लोक लुभावन घोषणाएं करता है तो दूसरा भी वैसा ही करता है जैसा पहला करता है। अगर पहला वाला थोड़ा कम वादा किया है, थोड़ा मुफ्त ज्यादा, तो वो और ज्यादा देने की बात कहेगा। इसी कारण ऐसी घोषणाएं करने की होड़ बढ़ती जा चुकी है। चुनाव के पहले लोक लुभावन जो घोषणाएं करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ऐसी घोषणाएं कुछ ज्यादा होने लगी हैं। इसका कारण यह है कि कुछ दल ऐसी घोषणाएं करके सत्ता में आने में सफल रहे हैं। अब सभी दलों में यह लगने लगा है कि मुफ्त बिजली, पानी, मोबाइल, लैपटॉप, साइकिल वगैरह, स्कूटी आदि देने की घोषणा करके चुनाव जीत सकते हैं। आप जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे साथ जो वादे किए थे वो क्या सभी पूरे हो गए? उन्हीं नहीं बल्कि चाहे जो लोग भी हैं, सारे वादे हमसे क्या पूरे हो गए हैं? अब देखो, जो लोक लुभावन घोषणा है उसके रेवड़ी संस्कृत बताते हैं, कह चुके हैं कि इस संस्कृत में के चलते देश का आर्थिक ढांचा चरमरा सकता है, लेकिन कई दल इस संस्कृति का बचाव कर रहे हैं। वे यह भी कहते हैं कि खुद जो हम लोग खुद हैं वो उस उनके जो वादे होते हैं उस पे अमल कर जाते हैं। हमें अपने आप पे जरा भी विश्वास नहीं होता है कि हम अपने सोच समझ से क्या कर सकते हैं। हमें खुद ही नहीं पता होता है हमें करना क्या है। तो जो रेवड़ी संस्कृति इसलिए फल फूल रही है क्योंकि जो योजनाएं किसी के लिए है वो किसी अन्य के लिए जन कल्याण भी हो सकती है। राजनीतिक दल को यह समझने को तैयार नहीं कि कौन सी योजना लोगों को आत्मनिर्भर बनाती है और कौन सी उन्हें पैरों पर खड़ा करने से रोकती है। उन्हें खुद नहीं पता और हमें खुद नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ, निसंदेह कई योजनाएं ऐसी होती है जो निर्धन तबके को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उनके जीवन को सुगम बनाती है। ऐसी कई योजनाएं हैं चल रही है, जैसे मोदी सरकार की रसोई गैस, बिजली, शौचालय, आवास प्रदान करने वाली सामाजिक विकास की अनेक योजनाओं की विशेषता यह है कि उनका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया गया है। हाँ, ये सब लोगों को मिला है, लेकिन इसके चलते हमें महंगाई भी तो मिली है। और भी कुछ राज्यों ने की अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया है, लोगों का जीवन सुगम बनाया है। सामाजिक उत्थान की योजनाओं ने केवल ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाए, बल्कि आर्थिक नियमों के अनुकूल भी होनी चाहिए। जब आर्थिक नियमों की अनदेखी पर लोक लुभावन जैसे जो वादे हुए करने वाले सत्ता में आ जाते हैं तो उन्हें लागू कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता है। नतीजा यह होता है कि उन्हें आधे अधूरे ढंग से लागू करते हैं। कोई भी सरकार अपनी लोक जो वादे हैं लोक लुभावन वादे हैं पूरी नहीं कर पाती है। जब वह आर्थिक रूप से सक्षम हो जन कल्याण की अनेक योजनाएं संचालित कर पा रही हो तो इसीलिए कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ सकती है। जब आप लोगों की मदद कर पाएंगे तभी तो देश आपका सुखी हो पाएगा। हाँ, विश्व में शायद कोई ऐसा देश हो जहाँ कमजोर तबके के उत्थान के लिए शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक योजनाएं न चलती हों, लेकिन जो हमारे देश में आर्थिक नियमों की अनदेखी करके ऐसी योजनाएं चलाते हैं वे आर्थिक संकट से घिर जाते हैं। ऐसे अनेक देशों में उदाहरण हमारे सामने है, इसमें कोई वो नहीं है। यूरोपीय देश की है और पाकिस्तानी सरीखे देश भी हैं। अपने देश में आर्थिक नियमों की अनदेखी कर वादे किए जाते हैं, घोषणाएं किए जाते हैं, करने वाले दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? कारण हम ही है जो उनके वादों को मान लेते हैं। इनमें उन राज्यों का भी दल है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। चुनाव वाले राज्यों के विशेष रूप से बहुत सारे राज्य हैं। अब यहाँ देखिए, रिजर्व बैंक का यह भी कहना है कि कोरोना काल में लिए गए कर्ज के कारण इन राज्यों की भावी सरकारों के अगले 5 वर्षों के दौरान कर्ज के एक बड़े हिस्से की हिस्सा बन सकते हैं। समस्या यह कि राजनीतिक दल इस पर विचार करने को तैयार नहीं कि यदि राज्य संग्रह का एक बड़ा हिस्सा लोक लुभावन वादा ही पूरा करने में हब जाता है तो फिर विकास का काम कैसे होंगे। इसमें मेरे कुछ क्वेश्चन भी हैं, अब उसका उत्तर भी बताइए। हाँ, इसका एक कारण उसका वामपंथी विचारधारा से ग्रस्त हो जाना है। यह किसानों की कर्ज माफी पर उसके साथ भी जोर दे रही है। ऐसी योजनाओं से किसानों को भला नहीं हो सकता है। सिर्फ वादे नहीं, उनका भला करके दिखाइए। रिजर्व बैंक तक अपनी चिंता जता चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दल बेपरवाह होकर लोक लुभावन जो वादे घोषणाएं करके एक तरह से वोट खरीदने का ही काम कर रहे हैं। इस सिलसिले को तभी रोका जा सकता है जब सभी दलों में से इसे लेकर कोई आम सहमति बने कि देश के किस हिस्से में सामाजिक उत्थान की कौन सी योजनाएं संचालित करने की जरूरत है। यह इस सहमति को आचार संहिता का हिस्सा बनाने का के साथ संसद स्वीकृति भी लेनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे अपने लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी करने से पहले रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग की स्वीकृति हासिल करें, ताकि यह परखा जा सके कि संबंधित राज्य की आर्थिक स्थिति लोक खाली वादे करके चुनावी वादों को वहन करके ही स्थिति में है या नहीं। वास्तव में समय आ रहा है कि चुनाव आयोग या CAG जैसी किसी अन्य संस्था को ऐसे अधिकार मिले कि यह राजनीतिक दलों को अनाप शनाप लोक लुभावन जो वादे हैं उनको रोक सके। धन्यवाद।